अभी हम पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए बाबा ने बहुत 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 महत्वपूर्ण रूप से कहा है। आप पिछले अव्यक्त मुरलियां अव्यक्त सीजन की देखो, 2017 से बाबा ने, वो लास्ट चांस था आने का, लेकिन उसके पहले की कुछ वर्षों की मुरलियां देखो तो 2012 से ऑलमोस्ट बाबा ये पांच स्वरूप के अभ्यास पर बहुत जोर देते थे। यहां तक बाबा ने कहा कि बच्चों को पांच स्वरूप का अभ्यास दिन में 8 बार 5-5 मिनट तक करना चाहिए, मतलब एवरी टाइम 5 मिनट्स। फिर बहुत पूछा था कौन हाथ उठाओ कौन करेगा। फिर दूसरे टर्न में जब बाबा आए तो बाबा तो चार्ट देखते हैं ना हम बच्चों का, तो बहुत कम हुआ था, तो बाबा ने फिर थोड़ा लिबरल होकर के कहा कि 5 मिनट नहीं कर सकते हो तो 1 मिनट भी करो। पांच स्वरूप का अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, ये 1 मिनट में भी साइकिल लगाओ। तब बाबा ने कहा कि बार बार ये करो, इसलिए जब शांति की शक्ति बचती है तो उस समय ज्यादातर ये अभ्यास करें, 1 मिनट में अपने पांचों स्वरूप का दर्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच स्वरूप का दर्शन जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र भी कहते हैं, आज भी मुरली में था, कई बार बाबा ने कहा है कि स्वदर्शन चक्रधारी क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। राजा कौन बनेगा? जो हर प्रकार से जीत होगी, है ना, जीतेगा वही तो राजा बनेगा ना। तो कितने प्रकार की जीत है? कर्म इंद्रिय जीत, फिर माया जीत, फिर मन जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत, फिर मोह जीत, राइट, फिर बहुत सारी जीत है, बहुत करना है राजा बनने के लिए, है ना। और सबसे पहले ब्राह्मणों को क्या करना है? फर्स्ट जीत, निंद्रा जीत, है ना। निंद्रा जीत हो गए ना तो बाकी जीत ऑटोमेटिक आएगी, पर ब्राह्मणों को सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो है निंद्रा को जीतना, है ना। फिर आती है कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, माया जीत, जगत जीत, मन जीत, है ना। तो ये सारी जीत के लिए आपके पास शस्त्र चाहिए, और वो शस्त्र है स्वदर्शन चक्र। इसलिए कहा कि भक्ति में भी एक ही शस्त्र अकाट्य हुआ करता था। अकाट्य माना उसको कोई, उसको तोड़ नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। ब्रह्मास्त्र को भी काटने के लिए अगर कोई शस्त्र होता था, एकमात्र स्वदर्शन चक्र। पर स्वदर्शन चक्र को किसी ने काटा हो ऐसा इतिहास में नहीं है, कोई भक्ति के शास्त्र में नहीं है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि जब माया का वार हो, मन बहुत उद्वेग में हो, कंफ्यूज हो, बहुत संकल्प विकल्प चल रहे हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आते, बाबा ने मुरली में कहा, जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे ऐसे विचार आएंगे, उस समय क्या करना है? एक शस्त्र काम करेगा, स्वदर्शन चक्र। मैं हूं कौन, जागृत करो उसको, तो सारे संकल्प बाकी के शांत हो जाएंगे। और इसलिए दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति क्यों बुलाते थे? इसी स्वदर्शन चक्र के लिए, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं और मैं क्या कर रही हूं। तो ठीक है, अभी हम स्वदर्शन चक्र अर्थात पांच स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। आपको पता है शास्त्रों में ये स्वदर्शन चक्र कैसे मिला विष्णु जी को? विष्णु जी धारण करते थे, लेकिन कैसे मिला वो किसी को पता है स्टोरी? क्योंकि शास्त्रों की स्टोरी तो ज्ञान से रिलेटेड ही है। कहते हैं कि विष्णु जी महादेव के भक्त थे और वो भावना से भक्ति करने हेतु उन्होंने 108 कमल पुष्प चढ़ाए थे शिवलिंग पर, और महादेव जी उनकी परीक्षा लेने हेतु जब 108 संपन्न हुए तो महादेव जी ने कहा कि एक तो मिसिंग है, काउंट करे तो 107 ही होता, एक गुम कर दिया था। तो विष्णु जी ने क्या किया, उसी समय आंख निकाल के चढ़ा दी शिवलिंग पर, क्योंकि विष्णु जी का हर अंग कमल के साथ कंपेयर्ड होता था, कमल नयन, हस्त कमल, चरण कमल, तो वो कमल नहीं तो ये कमल चढ़ा दिया। उसी के फल स्वरूप उनको वरदान में ये स्वदर्शन चक्र मिला था। ज्ञान से क्या रिलेट हुआ? जब तक ये स्थूल नेत्र नहीं चढ़ाएंगे ना, देह भान वाले, देह अभिमान वाले, देहिक दृष्टि वाली, ये जो दृष्टि अगर हमने अर्पण नहीं की, तब तक स्वदर्शन मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई भी बात बनती है, कोई भी प्रॉब्लम, समस्या, कुछ भी होता है तो ताली दो हाथ से बजती है ना? तो 50% सिचुएशन वॉज रिस्पॉन्सिबल, 50% मैं रिस्पॉन्सिबल, पर हमेशा हम करते क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल। सिचुएशन ऐसी थी, बात ऐसी थी, लोग ऐसे थे, लोगों ने किया ऐसे, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो स्व का दर्शन तो नहीं कर पाए क्योंकि देहिक दृष्टि थी। तो ऑनेस्टली अपने को देखने के लिए ये दृष्टि को हटाना पड़ेगा, ठीक है? और जिसके लिए बहुत सुंदर पांचों ही स्वरूप को बाबा ने हम बच्चों को दिया है, तो अभी कोई भी हलन चलन नहीं करेंगे। 11:15 बजे तक हम बैठेंगे यहाँ और डायरी पेन ओपन रखेंगे, क्योंकि बीच बीच में कुछ लिखेंगे भी सही। जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ से दिया जाए आप उसी को फॉलो करते रहेंगे, सारी बातों से फ्री हो जाएंगे। मोबाइल साथ में लाए हो तो उसको फ्लाइट मोड कर लो कि बीच में कुछ भी ना बजे, ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं बजे, वो बजना होगा तो यहाँ से बजेगा, क्योंकि ये पूरा ही माइंड का प्रोसेस है। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट भी रहेंगे और फ्री भी रहेंगे, और ऐसे बैठो कंफर्टेबली कि आपको शरीर को भी बहुत ज्यादा हिलाना न पड़े। और पीछे से अगर कोई भी बहनें आती हैं तो उनको भाइयों के साइड से आने को बोलो और पीछे बैठे, आगे अभी कोई भी ना आए तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है? अभी चलते हैं। सभी अपने को अनादि स्वरूप परमधाम की स्थिति पर ले जाएं। स्वयं को विजुलाइज करें परम धाम में परम ज्योति के समक्ष। अपने ही सामने दिव्य प्रकाश का पुंज, सर्वशक्तिवान गुणों का सागर शिव बाबा, जो अपनी अनंत किरणें परम धाम में प्रसारित कर रहे हैं। स्वयं को महसूस करो कि कैसे परम पवित्र परमात्मा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो रहे हैं। मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जाती है, उसका तेज प्रकाश बढ़ता जाता है। परमधाम में ज्ञान सूर्य के बिल्कुल समीप मैं आत्मा चमक रही हूँ। आत्माओं का कल्प वृक्ष परमधाम में है। विजुलाइज करो कि आत्माओं के कल्प वृक्ष की जड़ों में सर्वशक्तिवान परमात्मा बीज के साथ मैं आत्मा विराजमान होकर प्रभु पिता की सर्व शक्तियां समस्त वृक्ष की आत्माओं को चार्ज कर रही हूं। मैं आत्मा पूर्वज हूं, यहां मैं आत्मा अपने बीज स्वरूप में हूं, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण पावन, अनादि स्वरूप में जो आपके लिए सबसे पावरफुल स्वमान हो वो आप लिखें। उस स्वमान के स्वरूप बन कर लिखें आपके लिए वह स्वमान इतना पावरफुल हो कि एक सेकंड में संकल्प आते ही शक्ति का संचार हो। आप लिख करके फील कर सकते हो या फील करके लिख सकते हो, पर उसको अनुभव करके लिखना है। अनादि स्थिति से मैं आत्मा इस काल चक्र के आरंभ में सबसे पहले अवतरित होती हूं। स्वर्ण काल में विजुलाइज करो कि आत्मा एक दिव्य शरीर में प्रवेश कर रही है।
सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास, आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार, लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी।
संपूर्ण सत्व प्रधान प्रकृति है, शरीर भी सत्व प्रधान प्रकृति के तत्वों का बना हुआ, जिस संसार में कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, आपस में आत्मिक स्नेह होगा, जहां का गायन है कि शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो सोचो आत्माओं में कितना न प्यार होगा। हम प्रकृति पति आत्माएं हैं, जिनके संकल्प से सूर्य और चांद अपनी गति बदलेंगे, इतने खुशबूदार पुष्प होंगे जिस हवाओं में महक होगी, मैं आत्मा सत्व प्रधान स्वरूप में स्थित हूँ। जिसका गायन है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, पूर्ण पुरुषोत्तम आत्माएं अपनी नजरों के समक्ष वो देवताई चोला लाओ, देवताई ड्रेस, और अपने आप को देखो कितनी सुंदर सजी सजाई मूरत, देवताओं का आपसी जो स्नेह है वो दृष्टि से छलकता है, वो प्रेम भरी दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से आपके बाजू में जो बैठे हैं उनको निहारो, वही समझो कि वो अपने देवताई स्वरूप में है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को कहते हैं एक दूसरे का संपूर्ण स्वरूप देखो, नजर घुमाओ और बाजू में जो बैठे हैं उनको बहुत प्यार भरी देवताई नजर से, स्नेह भरी नजर से देखो। दिव्यता संपन्न मुस्कान से मिलो, वो आत्मा भी संपूर्ण सतो प्रधान अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित है। बाबा कहते संगम पर ही देवताओं का भी मिलन होता है। अभी सामने देखें और अपने आप को स्मृति दिलाए कि यही देवताई स्वरूप 1250 वर्ष रहेगा। जिस चेहरे पर सदा प्रसन्नता होगी, हर्षित मुख चेहरा, आंखों में दिव्यता, रूहानियत, मधुर शब्द, प्रेम पूर्ण व्यवहार, त्रेता युग में भी हम भल क्षत्रिय कहलाते हैं, परंतु देवताओं से केवल दो कला कम, अपने मस्तिष्क के पीछे पवित्रता का आभा मंडल विजुलाइज करें, मस्तक पर रतन जड़ित ताज है, ऐसे 2500 वर्ष इतनी ऊंची स्थिति में रहने के बाद द्वापर आता है। जहां आत्मिक शक्तियां थोड़ी सी कम हो जाती है, कलाएं कम हो जाती है, और अपनी दिव्यता से नीचे आ जाते हैं, परंतु हमें अपनी उस श्रेष्ठ आत्मिक स्थिति का आभास है, और इसलिए हमने ही अपने ही मंदिर बनाए, और पूजन आरंभ किया, अभी
ये है संकीर्णता की शक्ति।
स्वयं को भारत में से किसी भी प्राचीन मंदिर को सिलेक्ट करें। और उसकी मूरत में प्रवेश करें। भारतवर्ष के किसी भी प्राचीन मंदिर की मूरत के पास जाएं। और उसमें प्रवेश करें। विजुलाइज करें कि आपकी समक्ष भक्तों की भीड़ है। सभी खड़े होंगे। अपना राइट हैंड वरदानी स्वरूप में ले आए और विजुलाइज करें के सामने हजारों भक्त हैं जो लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। बहुत ऊंची अपेक्षा के साथ आपके समक्ष आए हैं आपके दर्शन करने हेतु। बहुत दुखी है, अनेकों परेशानियां हैं, किसी को तन की परेशानी, किसी को मन की परेशानी, किसी को धन की परेशानी, तो किसी को संबंधों की। हर प्रकार से दुखी आत्माएं आपके समक्ष खड़ी हैं। उन्हें सुखदेव और सुखदेवी बन वरदान दे। सदा सुखी भव। अपने हाथों से सुख की किरणें फैलाएं और जैसे जैसे ये सुख की किरणें उन आत्माओं को स्पर्श करती है उनके दुख मिट रहे हैं। हम मास्टर दुख हरता सुख करता आत्माएं हैं। जैसे जैसे उनके दुख मिटते जाते हैं उनके चेहरे प्रसन्न होते जा रहे हैं, मन खुश हो रहा है और आपके गुणगान गा रहा है। अभी अपने राइट साइड घूमिए। प्राचीन मंदिरों के चार द्वार होते हैं। इस दिशा की ओर भी अनेकों भक्त खड़े हैं जो अशांत है, व्यथित है। उन्हें शांति चाहिए। शांति देव, शांति देवी बनकर उन्हें शांति की किरणें दे। आपकी शांति की किरणें उनके मस्तक में आत्मा को स्पर्श करते हुए उनके अंग अंग को शांत शीतल बना रहे हैं। मन बुद्धि शरीर शांत हो रहा है। सदा शांत भव का वरदान देते हैं। अभी पुनः राइट साइड घूमिए। इस दिशा में जो भक्त कतारों में खड़े हैं वो भयभीत है, निर्बल है, असहाय है, अशक्त है, जिन्हें चिंताएं सता रही है, कल क्या होगा का डर है, उन्हें मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर विघ्न विनाशक बनकर अपने हाथों से अष्ट प्रकार की किरणें निकल करके उनके चारों ओर एक ओरा बना रही है। सभी भक्त उस शक्तिशाली चक्र के अंदर हैं और आप उन्हें निर्भयता का वरदान दे रहे हैं। निर्भय भव, निश्चिंत भव, सुरक्षित भव। आप उन्हें आश्वस्त करें कि मैं आपकी इष्ट देवी इष्ट देव सदा आपकी सुरक्षा में खड़े हैं। अभी राइट साइड घूमें। इस द्वार पर अनेकों भक्त खड़े हैं। जो निस्वार्थ प्रेम के प्यासे हैं, जिन्हें जीवन में बहुत धोखे मिले हैं, दिल के हजारों टुकड़े हो चुके हैं, निराशा में गर्क हो चुके हैं, जिनका प्रेम शब्द से विश्वास उठ गया है, नफरत की अग्नि में जल रहे हैं, घृणा की अग्नि में जल रहे हैं, आप प्रेम की मूर्त आत्माएं उन आत्माओं को निस्वार्थ सच्चा प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, दिव्य प्रेम की किरणें दे रहे हो। आप प्रेम की बहती गंगा हो, जिनके स्पर्श से, जिनके वाइब्रेशन से वो आत्माएं भी सर्वोच्च प्रेम क्या होता है उसकी परिभाषा समझने लगे हैं और गीत गाने लगे हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। आपके नैनों से, आपके मधुर मुस्कान से, आपके हाथों से प्रेम की गंगा बह रही है और सर्व आत्माओं को उसमें शुद्ध प्रेम का अनुभव करा रहे हैं। राइट साइड घूमिए, अपना हाथ नीचे करें और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा यह पूज्य स्वरूप कलयुग अंत तक बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है, विधि विधानों से पूजा जाता है, हर मर्यादा को पालन करते हुए पूजा जाता है। दो युगों तक हम ऐसी सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बनते हैं। काल चक्र अभी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। जब हम आत्माएं अपनी कलाएं नष्ट कर चुके हैं, अपने सारे गुणों को भूल चुके हैं, तब परम धाम से स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। इस संसार में करोड़ों आत्माओं में से मुझे पसंद करते हैं, कितने विद्वान, कितने महात्माएं, साधु संत, हर कोई हाजिर है इस संसार में, लेकिन भगवान की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी जो बिल्कुल साधारण स्वरूप में है। उसने आकर हमारा वो दिव्य स्वरूप पहचान लिया, हम उसके कल्प पहले वाले सिकिलधे बच्चे हैं, वो उसने पहचाना। कितने लोगों को निमित्त बनाया हमें ढूंढने के लिए, अब मन गीत गाता है, पाना था सो पा लिया। अपने भाग्य का गुणगान गाएं कि कैसे बाबा ने मुझे न केवल अपना बनाया लेकिन अपना संपूर्ण वर्षा मेरे नाम कर दिया। अपना सारा ज्ञान सर्व गुण और शक्तियां मुझे वर्षे में दे दी। जो पाना था सब कुछ मिला। अभी एक काम बाकी रहा और वो है बाबा की आश को पूर्ण करना। जिस उम्मीद से उसने मुझे अपना बनाया है उन उम्मीदों को पूरा करना। अब मैं केवल मेरे लिए सीमित नहीं हूं, केवल मेरे परिवार के लिए सीमित नहीं हूं, लेकिन मैं ईश्वरीय कार्य अर्थ निमित्त हूं। मेरे हजारों लाखों भाई बहने अनाथ हैं, उन्हें ईश्वरीय संदेश देकर सनाथ बनाना है। शिव बाबा ने मुझ आत्मा को अपना बनाया ताकि मैं अनेक आत्माओं से बाबा को मिला सकूं। स्वयं संपूर्ण बन औरों को बना सकूं। आलस्य और अलबेलेपन की नींद से जागृत हो जाएं, और स्वयं की जिम्मेवारी को समझें। इस ब्राह्मण जीवन का सर्वोच्च नशा आपके लिए क्या है वो लिखें। ब्राह्मण बनने के बाद ऐसी कौन सी बात है जो आपको नशे में ले आती है? यह नशा हमें निशाने तक पहुंचाएगा। हम ब्राह्मण आत्माओं का लक्ष्य है संपूर्ण फरिश्ता बनना। और फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में उड़ना। पिता श्री ब्रह्मा बाबा 56 ईयर्स से फरिश्ता बनकर हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे बच्चे फरिश्ता बनकर मेरे पास आएंगे। हमें तो 5 मिनट इंतजार की भी बहुत लंबी लगती है। अब सोचो 56 साल से कोई इंतजार कर रहा है, जिस बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने हमको अव्यक्त जन्म दिया, अव्यक्त पालना दी, अव्यक्त बनाने हेतु। चलो अब समय पुकार रहा है, बाबा बाहें पसार कर आवाहन कर रहे हैं, आओ बच्चे फरिश्ता बनकर मेरे पास आओ।
सूक्ष्म वतन में, बाबा के हाथ में अपना हाथ देकर बाबा से वायदा करें कि बाबा मैं अब आत्मा फरिश्ता बनकर इस विश्व का कल्याण करूंगी। बाबा के साथ विश्व के भ्रमण की ओर निकले, और अपनी समस्त किरणें फैलाते रहे। बाबा को हमसे बहुत कार्य कराने हैं, हमारे अव्यक्त स्वरूप से। अपना फरिश्ता स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप इमर्ज रखे, और बाबा के साथ वतन में अव्यक्त अनुभव करें।
Thank you. होता है। दूर निराला छलक रहा है।